हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस तरह पुणे में इस दौरान राजनाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा मना पाए। पहले बार इस तरह इतने बड़े मात्रा में, कुछ सालों के पहले जैसे एक फादर्स डे ऐसे एक दिन मनाते थे, उसमें थोड़े बहुत ऑफरिंग्स होते थे और कभी गोविंद प्रभु को बुलाते थे और गोविंद प्रभु प्रवचन देते थे, और कभी कभी एक दो साल हुआ भी नहीं बीच में। लेकिन इस बार हम जो मना रहे हैं, इसका स्फूर्ति देने वाले हमारे श्रीमान शुद्ध नेताई चंद्र प्रभु हैं। तो उन्होंने बताया थे कि जिस तरह हम गोपालकृष्ण महाराज की व्यास पूजा मनाया, ऐसे ही राजनाथ स्वामी को भी मनाना चाहिए। बहुत स्ट्रांगली उन्होंने रिकमेंडेशन दी, उसके बाद हमने सबको खत भेजा और आज हम मना रहे हैं। अलग अलग महाराज के पुत्रों और पुत्रियों की अमृत वर्षा, महाराज के गुणगान सुनकर हमें बहुत आनंद हुआ। ऐसा मुझे लगा कि मानो ये हमेशा के लिए चलते रहे, लेकिन समय की पाबंदी है इसलिए कुछ भक्तों को बोलने के लिए मौका नहीं मिली। गुरु के व्यास पूजा के दिन हम कैसे व्यास पूजा लेटर लिखना चाहिए, कैसे उनके गुणगान करना चाहिए, इसके संबंध में कभी कभी भक्तों को लगता है कि हमको ट्रेनिंग नहीं मिला, किसी ने बोला नहीं है, ऐसे कुछ भक्तों को लगता है। अलग अलग भक्त लोग अपने भावना के अनुसार गुरु की गुणगान करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये हमारा रिपोर्ट है, हम आपके लिए ये सब क्या है पिछले एक साल में 1 2 3 4 5 हम वो बता सकते हैं। वो गलत नहीं है, क्योंकि गुरु पिताजी हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनको रिपोर्ट देने में कुछ गलत नहीं है। दूसरे तरीके से व्यास पूजा का लेटर लिखना, गुरु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, जैसे उन्होंने गोपाल्स गार्डन किया है, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल किया है, अभी भक्तिवेदांत हॉस्पाइस वृंदावन में वूम टू टूम क्या क्या आयोजन किया है उन्होंने, हम सबकी भक्तिमय जीवन को बचा कर रखने के लिए, इस तरह उनके गुणगान कर सकते हैं हमारे लेटर में। तीसरा है, हम गुरु के दिव्य वैष्णव गुणों को संबोधित करके उसकी गुणगान कर सकते हैं। कैसे 24 गुण जो वैष्णव के गुण हैं गुरु के शरीर में दिखाई देते हैं, वो जिस गुण हमें आकर्षित करता है उस गुण को हम हृदय में सदा याद करते हैं, और वो तो स्वाभाविक रूप से हमारे मुख में निकल जाता है कि ऐसे गुण मुझे बहुत प्रभावित किया मुझे, है ना। ऐसे गुरु की दिव्य गुणों की गुणगान हम कर सकते हैं। और कुछ लोग गुरु के वाणी से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग गुरु के प्रेम से प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रेम के लिए कुछ भाषा की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कोई मुस्कुराता है वो उसको कुछ मराठी में हिंदी में इंग्लिश में मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, है ना। इस तरह हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति में कोई बच्चे नहीं है, युवक नहीं है, बूढ़े नहीं है, जब प्रेम की प्यास जो है इसके लिए उम्र ही नहीं है, कृष्ण भी प्रेम के लिए प्यास है। इसलिए राधा रानी जो हलादिनी शक्ति है उसकी दिव्य भक्ति से कृष्ण भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम शुरुआत में हम छोटे बच्चे थे, पहले साल में दूसरे साल में थोड़ा महाराज की प्रेम मिली, अभी हम बड़े हो गए। आप देखेंगे अगर कोई बड़े से बड़े काउंसलर भी हो जाए, अगर महाराज मुस्कुराते हैं बुलाकर ऐसे पैटिंग करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम गुरु के सामने हमेशा हम बच्चे रहेंगे कितना भी हम बड़े हो जाए। तो इसलिए कुछ लोग प्रेम से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग गुरु के वाणी से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग गुरु को दूर से देखकर उनके व्यवहार से सीखते हैं, उनका जीवन चाल कैसा है उसको देख कर सीखते हैं, इसलिए उसको गुणगान करते हैं। और गुरु के व्यास पूजा के दिन हम गुणगान करते समय मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा जिसके संबंध में हमें गुणगान नहीं करना चाहिए, ऐसे गोविंद प्रभु ने बोला। गोविंद प्रभु बोल रहे थे किसी व्यास पूजा के इसमें, किसी ने बोला कि महाराज जी सिर्फ एम्बेसडर कार में जाते हैं वृंदावन में और महाराज जी हमेशा ठहरते हैं फोगला आश्रम में। तो गोविंद प्रभु बोल रहे थे इस तरह शरीर के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके ऊपर अगर हम बताएंगे तो हम महाराज को लिमिटेशन कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि आगे जाकर आप फोगला आश्रम में ही आपको टहरना पड़ेगा, कभी भी एमवीटी में नहीं टहरना चाहिए क्योंकि एमवीटी में थोड़ा सुविधा ज्यादा होता है वृंदावन में हमारे मंदिर के पीछे। अगर कोई विनती देते हैं महाराज जी को आप एमवीटी मायापुर वृंदावन ट्रस्ट वो बिल्डिंग में आकर ठहरिए तो महाराज सोचेंगे कि व्यास पूजा में किसी ने बोला मैं फोगला में ठहरता हूँ इसलिए मुझे फोगला में ठहरना पड़ेगा और उनको एम्बेसडर कार में ही जाना पड़ेगा। इस तरह के चीजों का हमें गुणगान नहीं करना चाहिए। किसी ने बोला व्यास पूजा के ऑफरिंग में महाराज जी अमेरिका से आए थे और उनके पैर उस समय फ्रैक्चर हुआ था, उसको बांधकर अभी अभी ठीक हुआ था वो और बैंडेज भी था पैर में, तो आते ही महाराज जी नाचने लगे रथ यात्रा में। तो इस तरह की चीजों के ऊपर जोर देने से कभी कभी बोलते हैं लोग महाराज जी दिन भर ऐसे बहुत बिजी थे लेकिन दिन भर इतने काम करने के बाद भी वो फ्रेश थे, रात को युवक के समान थे, उनके अंदर थकावट नहीं है। तो हिजोलेंस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे इस तरह के चीजों के ऊपर हमें जोर देना नहीं चाहिए, ऐसे बोले। जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद रथ यात्रा में नाचते समय बीच में थोड़ा आराम किया उन्होंने, किधर जाकर जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, इसका मतलब नहीं कि उनके अंदर भक्ति नहीं है। तो हमें जिस चीज के ऊपर जोर देना चाहिए जिसमें जो नहीं देना चाहिए व्यास पूजा के दिन वो हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे चीजों को हमें गुणगान करना चाहिए गुरु के जीवन में, जिसको गुणगान करने से हमें भी लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, प्राप्त हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज सब भक्तों के बीच में महाराज की इतने अच्छे अच्छे तरीके से कुछ माताओं ने पोएम्स लिखी थी, बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने महाराज की गुणों की वर्णन की, कुछ लोगों ने महाराज की इतने बहुत सुंदर मधुर लीलाओं की वर्णन की। तो इतने कुछ क्षणों में महाराज की पूर्ण छवि मन में छा जाता है, महाराज के नाम, महाराज के गुण, महाराज के लीला इत्यादि। तो कृष्ण परम भगवान है, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि के वर्णन शास्त्र में होता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन कृष्ण तो बहुत दूर है हमारे लिए। शास्त्र में खुद बताया जाता है कि कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो हमें उनके शुद्ध भक्त की ओर आकर्षण को, आकर्षण चाहिए और आकर्षण को बढ़ाना है, उससे ही हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जैसे एक लकड़ी को पानी में डालो वो तो तैरता है, एक लोहे का रिंग को पानी के अंदर डालो वो डूब जाता है, लेकिन लोहे के रिंग को लकड़ी के ऊपर ऐसे डाल दीजिए और पानी में डालिए वो तैरेगा। वो इस तरह साधु हमेशा ऊपर तैरते हैं उनके दिव्य गुणों में, वो तीन गुणों में फंसते नहीं है, हमेशा उड़ते हैं दिव्य भावना में। और हम बद्ध जीव इस दुनिया में जैसे मुक्तावस्था बद्धावस्था बोला जाता है, बद्धावस्था में हम डूब जाते हैं, लेकिन अगर किसी साधु के दिव्य गुणों का स्मरण होता है, उनके वाणी का स्मरण होता है, उनके जीवन चरित्र से हम प्रभावित होते हैं, उससे हम भी तैरना शुरू कर देते हैं, उसका स्मरण करते करते उसका याद करते, इसलिए व्यास पूजा मनाया जाता है। क्योंकि व्यास पूजा के दिन शिष्य लोग अपने कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, अपने गुरु के स्मरण करते 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 हृदय में आंसू बहाते हैं शिष्य लोग, कितने महान है, कितने महान है, कितने, इसे बोलते बोलते सोचते सोचते वो भी ऊपर उठ जाते हैं, यही वैष्णव तरीका है। नहीं तो हम भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अगर दिव्य गुण प्रकट करते हैं तो सब बोलेंगे ये क्या बड़ी बात है, वो तो भगवान है, है ना, हम बद्ध जीव भगवान है ये क्या बड़ी बात है। लेकिन भगवान के कोई ऐसे महान भक्त इस दुनिया में आकर अपने दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं, इससे बहुत हमें लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे जीवन में मैंने देखा है महाराज जी उनके शिक्षण जो देते हैं प्रशिक्षण, मुझे लगता है कि उसमें सही प्रशिक्षण को उन्होंने पकड़ लिया है, जो सबसे बहुत जरूरत है। मैंने सुना कि बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आपने दोनों आचार्यों के टीका को सुना होगा भागवत में बहुत बार, अनेक उदाहरण आप देखेंगे। बलदेव विद्याभूषण हमेशा उस सिद्धांत को पकड़ते हैं, सिद्धांत के ऊपर जोर देते हैं, फिलॉसफी बहुत। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आप देखेंगे हमेशा वो रस के ऊपर जोर देते हैं, उनका सब उदाहरण रसमय है आप देखेंगे। किसके समान है, अगर आप एक इमारत बनाते हैं तो इमारत के लिए ईंट लगता है ना, तो ईंट से ही इमारत बनता है, वो सिद्धांत के बराबर है। ये बलदेव विद्याभूषण हो गए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे है, चैंडलियर होता है बिल्डिंग में, नहीं तो डांसिंग फाउंटेन होता है, सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल के फूल वेश होता है, ये लीला और रस के बराबर है। तो मैं जब देखता हूँ प्रभुपाद जी बहुत तत्व के ऊपर बहुत जोर दिया उनके समय में, लॉजिक एंड रीजन, रघुनाथ महाराज जी लीला के ऊपर बहुत जोर दिया है, रामलीला, कृष्ण लीला, चैतन्य लीला, और लीला के द्वारा वो तत्व को सिखाते हैं, जैसे यात्राओं में लेके जाते हैं और उनके प्रवचनों में भी अनेक लीलाओं को, जैसे चैतन्य चरण प्रभु बता रहे थे लीला का वर्णन बहुत बढ़िया करते हैं, उसके द्वारा वो तत्व सिखाते हैं। तो अलग अलग आचार्यों का एम्फेसिस हो सकता है इसे, और इस तरह वो मधुरता के द्वारा वो तत्व को सिखाते हैं। और एक शिष्य जो होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जीवन में, एक चीज है उसको पकड़ने से एक शिष्य का बहुत जल्दी प्रगति हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में, वो क्या है, इट इज इंटरनल सबमिसिवनेस एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल कमिटमेंट। सो नाउ सम पार्ट ऑफ माई टॉक आई विल स्पीक इन इंग्लिश, सम इन हिंदी, थोड़ा मैं हिंदी में बोलते अभी थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए एक व्यक्ति को देखने से बाहरी दृष्टि से पता नहीं चलता है कि उसके अंदर क्या समस्या है, प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई गूंगा हो, जब तक आप उसको कुछ प्रश्न पूछो जवाब नहीं दे पा रहा है तब तक आपको पता नहीं चलेगा, देखने से पता नहीं चलता है। अगर कोई लंगड़ा है, किसी को कुछ अपने शरीर में कुछ कमी है, व्याधि है, तो हमें पता नहीं चलता है ना। इस तरह बद्ध जीव के अंदर अनेक त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जो ऊपरी दृष्टि से वो दिखाई देता नहीं, जब तक उसके व्यवहार को हम देखते नहीं पता नहीं चलता हमें तब तक। जैसे एक एक पुरुषोत्तम प्रभु नाम के भक्त जो भक्ति छोड़कर चले जाने वाले थे लास्ट दिन, तो उस दिन सुबह उठकर आए प्रभुपाद जी के सामने, दंडवत प्रणाम नहीं किया उन्होंने, प्रभुपाद जी समझ गया कि इसके अंदर व्याधि है, समस्या है, क्योंकि जब समस्या होता है अंदर तभी व्याधि बाहर भी कभी प्रकट होता है। ऐसे तो हम देख सकते हैं, जैसे हम हाल में ऐसे घूम रहे थे अलग अलग मंदिर में प्रचार के लिए, तो एक मंदिर में गए हम, उधर एक ब्रह्मचारी भक्त आया मिलने के लिए, तो मैं उस मंदिर में गया हूँ, दो तीन बार गया हूँ, तो कुछ कुछ ब्रह्मचारी पहचानते हैं, तो मेरे पास आया था, वो बोला कि प्रभु जी वासना बहुत सताता है, प्रभु जी बोल रहा था मुझे ऊपर लेके गया ऊपर के माले में, मैं गया उसके साथ, तो रात को जैसे 8 बजे से 8:30-9 तक बोल रहा था मेरे साथ, तो आपसे थोड़ा सुझाव चाहिए। तो हमारे मंदिर के भक्तों को बोलने में थोड़ा संकोच होता है मुझे, तो आप तो कभी कभी आते हैं, आपको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा जरा बताइए, वासना बहुत सताता है क्या किया जाए। तो मैंने बोला उनको, देखो तुम जब तक ऊंचा रस तुम्हें प्राप्त नहीं होगा भक्ति में, तब मन हमेशा नीचे के दुनिया के भौतिक रस में डूबे रहेगा, तुमको शास्त्र अच्छा पढ़ना चाहिए, मैंने बोला। वो बोला प्रभु जी क्या बोला आपने, मैं तो 6-6 घंटा 8-8 घंटा पढ़ा हूँ शास्त्र, आप बोले मुझे क्या कमेंट्री चाहिए आपको, जीव गोस्वामी चाहिए, बलदेव विद्याभूषण चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चाहिए, मैं अभी बोलूंगा आपको, मेरे पास सैकड़ों किताब है, मेरे लॉकर में आपको दिखाऊंगा। बीच बीच में वृंदावन जाता हूँ, राधा वो रस बिहारी अंशन कंपनी से किताब उठाकर लेके आता हूँ पढ़ने के लिए, तो मुझे सब मालूम है प्रभु जी, मैंने पढ़ा है भक्तिविनोद ठाकुर का पढ़ा है, सब पढ़ा है मैंने, ऐसे बोला उसने। तो मुझे आश्चर्य लगा, तो मैंने बोला हरे कृष्ण के बारे में इतना पढ़ा है तुमने, क्या तुमको कृष्ण के ऊपर आकर्षण जागृत नहीं हुआ? कितने कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण कितने मधुर है। प्रभु जी मेरे मन में कृष्ण के ऊपर इतना आकर्षण है, उतना ही आकर्षण वासनाओं के लिए है, ऐसा बोला उसने। दोनों में बहुत अटैचमेंट है प्रभु जी, मेरा मन ऊपर भी उतना ही जाता है, नीचे भी उतना जाता है, ऐसा। तो मैंने बोला क्या बोला जाए इसको, ठीक है। मैंने उसको बोला देखो तुमको सेवा करना चाहिए, अगर वासना सता तो तुमको किचन में जाओ, स्वीट रेस को घुमाओ और किताब वितरण करो, बाहर कठोर परिश्रम करो, शरीर में जो भी ताकत है सब निकाल दो भगवान की सेवा में, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवना, ऐसे मैंने बोला। वो बोला हाँ प्रभु जी अभी मैं पुजारी बना हूँ, मैं पूजा करता हूँ, जैसे आपने बोला वो स्वीट रेस से बदले में हाथ घुमाता हूँ भगवान की सेवा में, सब करता हूँ, सेवा भी कर लेता हूँ प्रभु जी, लेकिन दूसरा कुछ उपाय बताइए। ठीक है मैं बोला कल बोलूंगा तुमको। तो उनके अध्यक्ष के पास गया तो उनके साथ बैठकर बोला कि आप इसको सीक्रेट रखो, कॉन्फिडेंशियल बात है, तो आपका एक भक्त को ये समस्या है, आपका सुझाव क्या है? तो वो बोले वो बड़ा बदमाश है। मैंने पूछा कारण क्या, ऐसे क्या बोल रहे हैं, वो देखने में इतना सुंदर दिख रहा है, ये लुक्स लाइक वेरी एफल्जेंट डिवोटी, और लगता है कि वो अट्टा कट्टा है और शास्त्र भी अच्छा पढ़ा है, इतना वो बोलता है कि बड़े प्रवचन भी दे सकता है हजारों लोगों के लिए, आप इसके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बोले देखो वो अपना मन का चीज करता है, वो शरणागत नहीं है, मैंने इतने उसके लिए प्रैक्टिकल सर्विस दिया है लेकिन सुनता नहीं है, कभी घूम जाता है, कभी वृंदावन जाता है, मायापुर जाता है, किताब लेके आता है, ऊपर जाकर 8-8 घंटे पढ़ता है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो करता नहीं है, उसके अंदर इंटरनल सबमिसिवनेस नहीं है, इंटरनल सबमिशन नहीं है, तो किसी को सुनता नहीं है, अपने मजे में रहता है, ऐसे बोला उन्होंने। तो दूसरे दिन मैं निकलने वाला था, उसको बुलाकर बोला मैंने देखो तुम्हारा प्रॉब्लम यह है, तुम इनकी बात सुनो और तुम शरणागत हो जाओ, जो बोला सो करो, तो तुम्हारे सब समस्याएं खत्म हो जाएंगे, मैंने बोला। तो एक बार रिजवानंद राधानाथ स्वामी महाराज इस विषय के बारे में बता रहे थे, उन्होंने वो ही बात बोला जो प्रभुपाद जी ने बोला। प्रभुपाद जी एक विभावती माता जी थी लंदन में, विभावती माता जी और ईशान ठाकुर प्रभु दोनों प्रभुपाद जी के पति पत्नी शिष्य हैं, दोनों प्रभुपाद जी के साथ चल रहे थे मॉर्निंग वॉक में। तो ये ईशान प्रभु ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मैं इतने पतित हूं और आप इतने महान हैं, ऐसे अदम से अदम व्यक्ति जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को आप जैसे महान से महान गुरु कैसे प्राप्त हुए? तो प्रभुपाद जी बोले बिकॉज यू आर सुमेधसा, ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने, क्योंकि आप सुमेधस हो, बुद्धिमान हो। वापिस प्रभु ने पूछा ईशान प्रभु, प्रभुपाद मैं तो बोल रहा हूँ मैं पति से पति तो अदम हूँ, आप मुझे बोल रहे कि मैं सुमेधस हूँ, मैं बोल रहा मेरा बुद्धि कुछ भी नहीं है, मैं तो अदम हूँ बहुत, ऐसे बोल रहे थे। प्रभुपाद जी बोला इसलिए तुम सुमेधस हो, ऐसे बोला उन्होंने, बिकॉज यू से यू डोंट नो एनीथिंग यू आर सरेंडरिंग टू मी, दैट इज व्हाई यू आर वेरी इंटेलिजेंट। जो व्यक्ति इस तरह गुरु की शरण जा सकता है वो ही समझ पाएगा, जो अपने आप को बहुत महान मानेगा वो कैसे शरण जा पाएगा, ऐसे प्रभुपाद जी बोले, ऐसे दैट इज व्हाई यू आर इंटेलिजेंट। और प्रभुपाद जी बोले ये सनातन गोस्वामी ऐसे ही पेश आए थे चैतन्य महाप्रभु के सामने, और विभावती माता जी वो भी चल रही थी, उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी तुरंत बोले मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु नहीं हूं, तुमको मुझे मानना चाहिए तुम्हारे पिता के समान, आध्यात्मिक पिता के समान, शाश्वत पिता के समान, ऐसे तुम्हें मानना चाहिए, ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने। आई एम नॉट योर स्पिरिचुअल मास्टर, यू शुड कंसिडर मी योर स्पिरिचुअल फादर, योर एटर्नल फादर, ऐसे बोले। तो अदरवाइज यू विल नॉट यू नो फील एनी लव, इफ यू फील आई एम ऑफिशियली अपॉइंटेड, इंस्टीट्यूशनली अपॉइंटेड यू नो केयर टेकर, इफ यू थिंक लाइक दैट यू विल नेवर लव मी, एंड लविंग द गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू कंप्लीटली फॉलो द गुरु, गिव अप वन्स रिजर्वेशंस, से पापा जी बोले। तो वही महाराज जी बोल रहे थे जब मैं महाराज को मिला, वो बोले कि इस दुनिया में अगर हमें बड़े चीज करना है कृष्ण के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, हमें लोगों के साथ ऐसे रिश्ता होना चाहिए उनके, उस रिश्ता के द्वारा ही लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। तो प्रचार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीचिंग? प्रीचिंग मींस इंस्पायरिंग, ही सेड। एंड वन मोर डेफिनेशन ही सेड, प्रीचिंग मींस फैसिलिटेटिंग अ लिविंग एनिटी टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर कृष्णा बाय यूजिंग ऑल हिज टैलेंट्स, बाय गिविंग हिम इंस्पिरेशन। ऐसे बोले, प्रचार का मतलब है हर एक जीव को अपने पास जो भी अच्छे योग्यता है, गुण है जो कृष्णा ने दिया है उस जीव को, उन गुणों को, उन कलाओं को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए एक जीव को इंस्पिरेशन, व्हाट इज इंस्पिरेशन, उत्साह, प्रेरणा, प्रेरणा देना एक जीव को, ये प्रचार है। ऐसे बोले। तो इसलिए वो एक बार एक एक भक्त के बारे में महाराज पूछ रहे थे, एक भक्त को कुछ प्रॉब्लम था, तो भक्त रूम में आया था महाराज को मिलने के लिए। मुझे मालूम था कि वो भक्त का क्या प्रॉब्लम है, तो आया था रूम में, दंडवत किया महाराज को। महाराज ने दूसरा कुछ अनेक चीज बात किया उसके साथ और उसको वापस भेज दिया। तो मैंने महाराज को पूछा, महाराज वो समस्या के लिए आया था और आपने इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया उसके बारे में, आपने दूसरे कुछ बात किया, शायद मुझे लगा कि आपने भूल गया। महाराज बोले, ही इज नॉट रेडी, अभी वो तैयार नहीं है, अभी इंस्ट्रक्शन स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए मैं बाद में दूंगा उसको। ऐसे बोले। यही इसका मतलब है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है जब तक प्रेरणा, कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को आदर देता है और सुनने के लिए तैयार है उपदेश, तभी प्रेरणा दिया जा सकता है यानी उस व्यक्ति को। ऐसे तो इंटरनल सबमिशन का मतलब क्या है, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि किसी कोई गूंगा है, कोई ऐसा है वैसा है, लेकिन बाहर दिखाई नहीं देता, इस तरह हरेक भक्त के अंदर अनेक अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिसके साथ हम लोग संघर्ष करते हैं और उससे ऊपर उठने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हर एक भक्त सिंसियरली, वो साल के बाद वो अनर्थ से कैसे ऊपर उठना, इस तरह सब लोग सोच रहे हैं। तो ये सब अनर्थ को छोड़कर ऊपर उठने के लिए एक शिष्य को गुरु के वाणी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन में। इसको इंटरनल सबमिशन बोलते हैं। जैसे एक लड़के को बोलो, अरे एक आपको शादी करना है ना, यू मैरी विद अ डिवोटी गर्ल, ही विल से ओह आई हैव टू आस्क माय पेरेंट्स। उसका मतलब क्या है? सो यू विल फाइंड दैट द लैक ऑफ इंटरनल सबमिशन विल बी सीन इवेंचुअली फ्रॉम वन्स बिहेवियर एंड वन्स एक्टिविटीज। इसे एक बार हम महाराज को पूछ रहे थे, एक भक्त था, वो पूछ रहा था महाराज जी को, महाराज जी ये अहंकार को कैसे खत्म किया जाए, अहंकार बहुत सताता है। तो महाराज बोले, तुम्हें अहंकार की कैसी समस्या हो सकता है, चैतन्य महाप्रभु जो प्रेमावेश में ऐसे नाच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु वो बोल रहे हैं कि दुर्दैवम इहाजनि न अनुरागः, अरे दुर्दैवम मेरे अंदर प्रेम नहीं है, भगवान के नाम लेने में आकर्षण नहीं है, ऐसे अगर वो बोल रहे हैं तो तुम्हारे अंदर किस तरह का अहंकार आ सकता है कि तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम है? ऐसे महाराज पूछ रहे थे। बस एक लाइन में उन्होंने बंद कर दिया उस व्यक्ति को ऐसे। और उसके बाद आगे वो बोल रहे थे, देखो तुमको अगर गर्व होता है कि मैं पिछले 50 साल में एकदम पक्का भक्त हूं, मैंने गलत नहीं किया है मेरे जीवन में, मेरा चरित्र देखो, मैं हिस्ट्री दिखा सकता हूं, ऐसे अगर किसी को लगता है तो उसको क्या करना चाहिए? 51 years ago, what mistake you did, that you should remember. He said, if you think 50 years, you didn't commit mistake. क्योंकि ऐसे कोई जीव नहीं है दुनिया में जिसने गलत नहीं किया है, छोटा बड़ा सब लोग गलती करते हैं। तो उसका स्मरण करने से तुम्हारे अंतर अहंकार नहीं आएगा कि तुमने गलती नहीं किया है। और वो साथ में बोले कि हरेक व्यक्ति को अपने गलती को स्वीकार करके सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटरनल सबमिसिवनेस, ऐसे वो बता रहे थे एक व्यक्ति को। इफ यू आर इंटरनल सबमिसिव, यू शुड बी विलिंग टू एडमिट योर फॉल्ट एंड विलिंग टू चेंज एंड ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि महाराज के प्रवचन और महाराज के शिक्षण ऐसा है, वो सीधा एक व्यक्ति के उन अनर्थों को शुद्ध कराने के लिए फोकस देते हैं, जिसको सुधारने से बाकी सब समस्याएं सुधर जाएंगे अपने आप। जैसे उनके प्रवचन में बहुत जोर देते हैं किसके ऊपर, हमेशा हमें एक सेवक की भावना में रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट द मूड ऑफ अ सर्वेंट। किम कर, किम कर मीन्स किम करो, मैं क्या करूं आपके लिए। वो छोटे भक्त हो, बड़े भक्त हो, वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो, कोई भी हो, ऑलवेज इन द मूड ऑफ बीइंग अ सर्वेंट। तो जब मैं और गौरंग प्रभु महाराज के साथ थे, बाबा साहेब पुरंदरे उनको महाराज मिल रहे थे एक सेपरेट प्राइवेट रूम में, तो दोनों साइड साइड में बाजू बाजू में बैठे थे। एक्चुअली जब मैं महाराज को मिलने के लिए जाता हूँ कभी भी गौरंग प्रभु के साथ, अगर महाराज जी दूसरे से बात करते हैं तो गौरंग प्रभु थोड़ा रनिंग कमेंट्री देते हैं, कमेंट्री देते रहेंगे, कुछ कुछ ना कुछ मुझे बताएंगे। तो वो दोनों बात कर रहे थे तो कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहे थे बाबा महाराज जी बाबा साहेब पुरंदरे को। तो पहले महाराज जी पूछने लगे उनको, मैंने सुना आपने जानता राजा ये शिवाजी महाराज के संबंध में बड़ा बहुत ड्रामा अच्छा किया, वो जगत प्रसिद्ध है, सो वो बता रहे थे। तो बाबा साहेब पुरंदरे बहुत नम्र थे, ऐसे उनकी आंख भी थोड़ा बंद था, ऐसे बहुत नम्र भावना से बैठे थे ऐसे। तो महाराज जी उनको बहुत गुणगान किया उनके शिवाजी ड्रामा के समय। अब महाराज जी ने बोला कि शिवाजी भी धर्मपरायण था, इसलिए मैं बहुत पसंद है शिवाजी को, ऐसे महाराज बता रहे थे उसको। और महाराज ने उनको पूछा, आपको शिवाजी के अंदर क्या गुण अच्छा लगा आपको, ऐसे बाबा साहब को पूछा। बाबा साहब बोले कि शिवाजी सब धर्मों को साथ देता था वो। एक बार शिवाजी और उसके सब लोग सैनिक लोग साथ में जा रहे थे और एक चर्च को देखा उन्होंने क्रिश्चियन लोगों का, तो शिवाजी के पास के लोग जो थे वो सब उसको तोड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। तो शिवाजी ने बोला कि देखो इधर भगवान की पूजा कर रहे हैं लोग, इसको मत तोड़ो, ऐसे बोला उसने। तो बाबा साहब बता रहे थे कि देखो शिवाजी के अंदर ऐसे भावना थी कि सब धर्म परायण लोग जो हैं उनकी सुरक्षा होना चाहिए, ये मुझे बहुत पसंद आया, ऐसे बता रहे थे। तभी गौरंग प्रभु बता रहे थे मुझे, देखो महाराज की सी महाराज पोस्चर, महाराज जो ऐसे बैठे थे उनके सामने, ही वॉज लाइक दिस। तो गौरंग प्रभु बोले ये महाराज बड़े सन्यासी हैं और वो बाबा साहेब पुरंदरे एक लेखक है, बहुत बड़े लेखक हैं, ड्रामा डायरेक्टर हैं। फिर भी महाराज जी उनके वायस उनके उम्र जो है उसको मानकर उनके सामने बहुत नम्रता के साथ पेश आ रहे हैं। देखो लाइक दिस गौरंग प्रभु वुड कीप सम कमेंट्री समटाइम्स, कीप गिविंग, सो बता रहे थे ऐसे। तो ये महाराज जी को मैंने देखा है, वो हर क्षण चाहे जैसे मैंने देखा सचुपदास महाराज के एक शिष्य प्रभुपाद जी की समाधि के बाहर महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, वो वृंदावन के मंदिर में, तो महाराज जी भी उसको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो उसको बहुत संकोच हुआ, तो वो तुरंत उठकर बोला कि महाराज जी आपको जरूरत नहीं है दंडवत करना, मुझे करना चाहिए, मैं तो आपके बेटे के समान हूँ। तो फिर भी महाराज जी अगर उनके शिष्य कोई दंडवत करते तो ऐसे करेंगे, लेकिन इस किसी और गुरु के शिष्य करते हैं तो महाराज वापस दंडवत भी दे देते हैं ताकि कुछ गलत फहमी ना हो। तो ये भावना महाराज अपनाते हैं और ये शरणागति, ये सरेंडर, ये सर्वेंट मूड, इसको जोर देने से क्या है, इस दुनिया के सब लोग जीते जाएंगे इस दुनिया में। इफ दिस वन मूड इज अंडरस्टूड एंड अडॉप्टेड एंड वन मेक्स एन एफर्ट, और ये इंटरनल सबमिशन का सबसे उच्च कोटि का है, क्योंकि गोपियां वृंदावन के गोपियों का शरणागति भावना ऐसे ही है, द मूड ऑफ इंटरनली अडॉप्टिंग द मूड ऑफ अ सर्वेंट, दिस इज हिज मेन टीचिंग। कहीं भी हो, जैसे मैं ह्यूस्टन में गया था अमेरिका में, एक अद्वैत चंद्र प्रभु करके एक भक्त है, वो प्रचार करके 15-20 परिवारों को बहुत अच्छा भक्ति में लाया है। मैं उनको प्रवचन देने के लिए गया था उधर, एक परिवार के भक्त को पूछा मैंने, आप लोगों के काउंसलर कौन है, वो बोल रहे थे कि वो मंदिर के अध्यक्ष हैं कोई श्याम सुंदर प्रभु, वो भी गृहस्थ भक्त हैं, वो बोल रहे थे कि वो काउंसलर हैं। तो मैंने इनको पूछा अद्वैत चंद्र प्रभु को, अरे आपने प्रचार करके लाया इतने लोगों को और ये सब लोग आपका नाम ले रहे हैं और आप काउंसलर नहीं हो, बोले कि ये महाराज का आदेश है, महाराज ने बोला कि ये सब लोगों को मंदिर के अध्यक्ष के पास दे दो क्योंकि तभी अच्छा सेवा करेंगे उधर ह्यूस्टन में, और तुम यू बी ए इंस्पायरर, दैट्स ऑल, यू डोंट बी ए काउंसलर, यू आर सेलिंग लाइक दैट, ताकि सब लोग ऐसा ना करें कि ये लोग राधानाथ स्वामी की सेवा करे और मंदिर की सेवा ना करे, इसलिए महाराज ने वो सब लोगों को मंदिर से जोड़ा था इसे। सो महाराज टीचर्स द फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ वैष्णव लाइफ स्टाइल, टीचर द वेरी फाइन प्रिंसिपल्स। जैसे चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन के समय पहले बड़े ग्रास क्या बोलते हैं गार्बेज को इकट्ठा किया उन्होंने, उसके बाद कचरा बहुत फाइन कचरों को इकट्ठा किया। महाराज फाइन कचरों के ऊपर ध्यान देते हैं, जिनको मालूम है कि ये सटल अनर्थस को निकाला जाए तो ग्रास अनर्थ अपने आप छूट जाएंगे, उनको अच्छी तरह मालूम है। तो ये बहुत ये गुण जो है मुझे महाराज के जीवन से, महाराज के प्रवचनों से बहुत कुछ सीखने को मिले। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ साधना और जिम्मेदारी के संबंध में, क्योंकि ये प्रश्न सब भक्तों के मन में उठता है। तो मैंने देखा है महाराज जी जब बॉम्बे में रहते थे, कभी मैं उनको मैं मिलने के लिए जाता था, उनका स्केड्यूल बहुत अच्छा होता है। उन दिनों में 1991-92 में महाराज जी हर दिन शाम को प्रचार करते थे, कार्यक्रम के लिए जाते थे बाहर। गिरिराज महाराज, राधानाथ स्वामी साथ में देते थे, मैं भी कार्यक्रम के लिए जाता था। रात को लेट आते थे 10:30 बजे, तो उनकी तबीयत भी कुछ बिगड़ गया था उसके कारण। लेकिन कुछ साल बिताने के बाद मैंने देखा महाराज जी हफ्ते में सिर्फ 3-4 कार्यक्रम करते हैं, जैसे सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून वो करते हैं, और बाहर 1-2 दिन कार्यक्रम करते हैं। तो एक दिन उनके रूम में गया था मैं, तो महाराज जी प्रभुपाद जी की प्रवचन सुन रहे थे, वॉज हियरिंग प्रभुपाद लेक्चर। मुझे बोलने बैठने के लिए बोला, बोला कि तुम भी सुनो, तो मैं भी सुन रहा था। तो महाराज का लंच का टाइम हो गया, तो उसके बाद वो क्या सर ऑफ करके मेरे साथ 10 मिनट बात किया, और महाराज बोला कि I have to morning I hear Prabhupada lecture and afternoon I prepare for yatra lectures दोपहर को। तो बोला कि मैं घंटों घंटे बिताता हूँ चैतन्य चरितामृत भागवत ये सब पढ़ने में, क्योंकि अगर मैं अच्छी तरह नहीं तैयारी करूंगा, शास्त्रों को अच्छी तरह नहीं पढ़ूंगा, तो हजारों लोगों को उनके समय को मैं व्यर्थ करवाऊंगा। I'll be wasting the time of thousands of devotees if I don't prepare for my lecture very well. So nowadays I am focusing more on preparing myself rather than simply giving lecture here and there. ऐसे बता रहे थे महाराज जी। तो इस तरह अपने पठन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं महाराज जी। अनेक प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि महाराज जी कैसे वर्बेटिम बोलते हैं चैतन्य चरितामृत से, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बोलते हैं। इसका कारण क्या है, बार बार महाराज जी पढ़ते हैं बहुत। तो अनेक बार हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो वो गुरु हैं हजारों शिष्यों के रक्षा करने वाले हैं, वो समय निकालते हैं पढ़ने के लिए। इस तरह आप देखेंगे सुबह जब राधा गोपीनाथ मंदिर में रहते हैं, जपा के टाइम एक जगह बैठते थे तो उठते नहीं थे। तो दर्शन का जब कांच शंख कावज आता है तभी उठते थे उधर से, उसके बाद सीधा शंकर दर्शन के लिए जाते थे और आकर प्रभुपाद जी को फूल चढ़ाना। मैंने मेरे आंखों से देखा है उन दिनों में भी, आजकल भी मैं देखता हूँ, इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। नहीं तो उदाहरण के बिना हम किसी को, वी कैन नेवर मेक समबडी सबमिट विदाउट आइडियल एग्जाम्पल। तो उनके जप में पूरा जप 16 माला इतना ध्यान से, कुछ भी बात नहीं करते थे बीच में। और महाराज ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया है कि कुछ बीच में बोलना है तो एक चिट में लिख कर रख दो, तो बीच में मत बोलो, तो पूरा ध्यान। तो वो भी हम महाराज से सीख सकते हैं। तो साधना, चैंटिंग एंड रीडिंग, ये दोनों के ऊपर महाराज जोर देते हैं। जितना भी बिजी हो इसके ऊपर जोर देते हैं। हल्दो भी महाराज स्प्रीचिंग, महाराज प्रचार करते हैं, अनेक शिष्यों को बनाते हैं, इतने लोगों को प्रभावित किया उन्होंने। लेकिन जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं महाराज जी मेरे साथ 2 घंटे बात किए, वो भी करते हैं महाराज कभी कभी, लेकिन सही टाइम साधने के लिए भी देते हैं महाराज जी। और महाराज एक बार बोले कि अगर कोई जिम्मेदारी में डूब जाता है कोई व्यक्ति, वो बहुत समय टिकेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ जिम्मेदारी करता है लेकिन साधना के ऊपर जोर नहीं देता है। वो करेगा 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 और एक दिन चला जाएगा वो, क्योंकि उसको रुचि चला जाएगा। और अगर कोई साधना के ऊपर बहुत जोर देता है, कभी कभी शास्त्रों को पठन में लोग डूब जाते हैं, वो मिशन को अपने जीवन में जोर नहीं देते हैं, ऐसे लोग इस्कॉन से, प्रभुपाद जी से, गुरु से अपने कनेक्शन को भूल जाएंगे। ऐसे लोग सोचेंगे कि मैं कृष्ण को पा जाऊंगा मेरे ही बलपुते पर, मैं शास्त्र पढ़ लिया, मुझे सब मालूम है, मैं कृष्ण को पा लूंगा, तो वो शरणागति का भावना चला जाएगा सिर्फ शास्त्र में पांडित्य प्राप्त करने से। ऐसे बोले वो। इसलिए दोनों का बैलेंस बहुत जरूरत है, समन्वय बोलते हैं उसको, दोनों का बैलेंस की बहुत जरूरत है, साधना और जिम्मेदारी दोनों करना चाहिए। तो महाराज जी की संतुष्टि के लिए पुणा के अनेक भक्त साथ में आकर बहुत से बहुत अच्छे अच्छे सेवाएं की हैं पिछले साल में। जैसे संभाम युग युग कार्यक्रम श्री गुरुचरण प्रभु की उत्साह के कारण उनके साथ जुड़कर अनेक भक्त लोग साथ में आकर ये शो उन्होंने किया था कुछ ही समय दिनों के पहले, उसका बहुत असर पड़ा है पुणे के लोगों के ऊपर। आजकल हर दिन लोग आते हैं बोलते हैं कि संभव में युगे युगे हैं, उधर से हम आते हैं, उधर आए थे हम, अभी भक्त बन रहे हैं, अनेक लोग ये लाइफ पैटर्न बन रहे हैं, बालाजी सेवक बन रहे हैं। तो श्री गुरुचरण प्रभु ने बहुत कठोर परिश्रम किया है इसके लिए, और भी उनका बड़े अच्छा टीम है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जरूर महाराज जी खुश होंगे कि मैं मेरे आंखों के सामने महाराज जी ने तीन लोगों को प्रॉपर डिसेबल्स को बोला मेरे सामने ही, दिस इज राधेश्याम एंड पूना कांग्रेगेशन, दे आर बिल्डिंग अ बिग 25 crores टेम्पल, ऐसे उन्होंने गुणगान की। इसका मतलब है महाराज जी बहुत मानते हैं, बहुत खुश हैं ये NBCC प्रोजेक्ट से, कि एक्चुअली उनके आदेश अनुसार ही हम ये मंदिर बनाने की आइडिया शुरू की थी। क्योंकि पहले मैंने सोचा कि मंदिर बनाने से समय बहुत चला जाएगा, हमारे पठन में श्रवण में कीर्तन में समय दे नहीं पाएंगे, लेकिन राधना स्वामी के उत्साह मैंने देखा, उन्होंने बोला कि नया मंदिर को बनाना ही चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना गोपालकृष्ण महाराज ने जोर दिया उतना ही राधना स्वामी ने भी जोर दिया है, एंड ही वॉज प्रेजिंग मेनी टाइम्स दैट दे आर बिल्डिंग अ ब्यूटिफुल टेम्पल इज कमिंग अप इन पुणे। ऐसे तो ये संभव पहले आपको मालूम है कि गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें राष्ट्रविग्रह प्रभु और अनेक 30-40 माताएं टीचर्स वो लोगों के कारण वो लोगों ने इतना परिश्रम किया है कि गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस्कान का नाम आया है, इस्कान पुणे, शायद आपने देखा होगा वो सर्टिफिकेट। और साथ साथ सुंदर और प्रभु सासवड़ में लक्ष्मण प्रभु ने एक भागवत सप्ताह की थी उधर, अभी बोरकर प्रभु रहते हैं उधर सासवड़ में, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल, और ये लोग भगवत गीता को वितरण कर रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में, हजारों हजारों मात्रा में, जैसे एसे कंपटीशन, एलोक्वेशन कंपटीशन, और ललित मात्र सुंदर श्याम प्रभु ये कंपटीशन कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे पहले क्विज कंपटीशन, ऐसे लगता है कि पुणे का वितरण इस साल लगभग 1.5 लाख-2 लाख हो जाएगा भगवत गीता का वितरण। तो शायद अगर आप में से किसी को मालूम नहीं है तो आप इन भक्तों को मिल सकते हैं, सुंदर श्याम प्रभु और ललित माध प्रभु और राष्ट्र विग्रह प्रभु ये टीम को लीड कर रहे हैं। अभी तक 30 कितने माताएं हैं, 30 माता जी हैं, और भी जरूरत है, जो लोग थोड़ा समय दे सकते हैं ये सेवा के लिए, स्कूल में जाना और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, खास करके टीचर्स के माताओं की जरूरत है जिनके पास टाइम है, आप लोग राष्ट्र विग्रह प्रभु से मिलिए। तो महाराज जी को एक कथ लिखने वाले हैं इसके बारे में, कैसे इस साल इतना भगवद गीता का वितरण हुआ है बहुत अच्छी तरह है। तो नया मंदिर आएगा, प्रभुपाद जी की किताब वितरण करना एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण अंग रहेगा हमारे मंदिर में। जैसे चौपाटी मंदिर जब शुरू हुआ 1986 में, उन दिनों में किताब वितरण के लिए कोई नहीं जाते थे, जब मैं भी था 91 से 94 बहुत दिन में 5-10 किताब वितरण होता था, लेकिन राधा स्वामी का आइडिया ऐसा है कि भक्तों को संख्या को बढ़ाया उन्होंने, ट्रेनिंग दिया, एजुकेशन दिया, पक्के होने के बाद सबको बाहर भेजकर आजकल लाखों लाखों किताब वितरण करते हैं वो। सो वी आल्सो वांट टू डू द सेम थिंग, वी आर इंक्रीजिंग द डिवोटीज नाउ, बट वी आल्सो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स। तो सो आई वाज स्पीकिंग अबाउट दिस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनल सबमिशन, एंड दिस इज पॉसिबल हाउ राधा स्वामी राइट्स इन हिज सेकेंड बुक, ही सेज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज पर्सनल एक्टिव रेसिप्रोकल। प्लीज ऑल ऑफ यू रिपीट दिस थ्री वर्ड्स, पर्सनल एक्टिव रेसिप्रोकल। इफ दीज थ्री थिंग्स आर नॉट देयर वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग प्रॉपरली इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। पर्सनल मीन्स वन शुड हैव फीलिंग्स फॉर द गुरु वेरी पर्सनली विद इन द हार्ट, यू नो प्रभुपाद एंड माय गुरु महाराज दे हैव सेव्ड मी एंड आई शुड डू समथिंग फॉर देम, एंड लाइक आई वाज सेलिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ द गुरु, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु शुड become interwoven in the heart of the disciple, and disciple should always carry the guru in his heart. in her heart. It's personal. Active means your disciple's life should be very active in Krishna consciousness, not in Maya consciousness. Actually, we have many family responsibilities. Brahmacharis have many administrative responsibilities in temple also. But we have to keep ourselves active in Krishna consciousness. And because Krishna consciousness is activity. And reciprocal means the counselors, jo counselor log hain, wo guru ko pratinidhitva karte hain. So counselor logon ka kartavya hai ki guru ke diye hue upadeshon ko, aadeshon ko, wo apne counselors ko de, unke jeevan mein aise charitra laaye jo guru ko bahut prasannata dega. Aise charitravan bhakta banaye, log puchenge ki ye kiska shishya hai, kaun aise puche. Ye guru ka kartavya, ye काउंसिल का कर्तव्य पड़ता है, क्योंकि गुरु सब लोग तक पहुंच नहीं पाएंगे, सिर्फ वाणी को पहुंचा पा सकते हैं. लेकिन व्यक्तिगत प्रशिक्षण देना ये काउंसलर का ड्यूटी है. तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कैसे पॉसिबल है? काउंसलर काउंसिली, ऐसे काउंसलर सेवाएं देते हैं, काउंसलर सेवाएं लेते हैं, लेकर अपना ये सेवाओं को पूरा करते हैं. तो हम इफ यू हैव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, that internal accountability will manifest externally as external accountability also, eventually. And adopting the mood of a servant in all that we do. And hum har ek bhakta ko kathor parishram karna padega, hamare anarthon ko purna tarike se jad se ukhadne ke liye, nikalne ke liye. Uske liye guru ke vaani ko sunkar, guru ko kritagnya bankar, guru ki seva karke, hamare chitta ko shuddha karke, hum bhakti mein aage badh sakte hain. तो आज के शुभ दिन में, जैसे अपने बर्थडे के दिन कृष्ण बलराम भेंट देते हैं गायों को और दूसरी चीजों को, ब्राह्मणों को, ऐसे हम महाराज जी से, हम मेरे लिए और सब कांग्रीगेशन के और ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों, सब भक्तों की आध्यात्मिक जीवन के लिए महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि आप हमें ऐसे शक्ति प्रदान करिए जिससे हम हमारे हृदय के मल को हम निकाल पाए और हृदय हमारा चित्त शुद्ध हो. और आप ऐसी शक्ति दीजिए जिस तरह आप अपने इतने जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप इतने बहुत प्रेम और आनंद के सागर में आप डूबे रहते हैं और सब दुनिया के लोगों को आप आनंद प्रदान कर पा रहे हैं, कृष्ण के पदकमलों में आप स्थित हुए हैं. ऐसे हमें भी एक बूंद मात्रा में आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग अपने कर्तव्यों को सही ढंग से आप निभा पाए और आपको, आपके मन को हम खुश करें. श्री राधानाथ स्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की, श्री राधानाथ स्वामी व्यास.